बीबीसी इंडिया बोल 3 नवंबर दिन शनिवार, मैं हूं वात्सल्य राय। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के बहाने सरदार पटेल की विरासत पर दावेदारी। बीजेपी नेताओं का आरोप, कांग्रेस ने नहीं दिया लौह पुरुष को सम्मान। राहुल गांधी की दलील, कांग्रेसी थे सरदार पटेल। सियासत की जंग में सरदार पटेल पर किसका कितना हक, इंडिया बोल में आज इसी सवाल की पड़ताल। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुफ्त फोन कीजिए 1811 7000 और 1811 7001 पर। बतौर मेहमान चर्चा में हिस्सा लेंगी वरिष्ठ पत्रकार अदिति फर्नेस। चर्चा के लिए थोड़ा इंतजार, पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्लाह अली खमेनेई ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर तीखा हमला बोला है। ट्रंप ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध फिर से लागू कर दिए हैं, जो सोमवार से प्रभावी हो रहे हैं। खमेनेई ने कहा कि ट्रंप ने अमरीका की साख को चोट पहुंचाई है और ईरान पर प्रतिबंधों से अंततः नुकसान अमरीका का ही होगा। तेहरान में छात्रों को संबोधित करते हुए खमेनेई ने कहा,
دشمنی با آمریکا رو فراموش نکنید. فریب لبخند دروغین
امریکا سے ہماری دشمنی کو مت بھولو. دشمنوں کی جھوٹی اور فریبی مسکان کے دھوکے میں نہ آؤ. کبھی وہ کہتے ہیں کہ ایران کے لوگوں سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے اور ان کا ویرودھ صرف ایران کی سرکار سے ہے. یہ جھوٹ ہے. اپنے لوگوں کے ساتھ کے بنا ایران کی سرکار کچھ نہیں کر سکتی ہے. इसी बीच रूस ने अमरीकी प्रतिबंधों के प्रभावी होने के बाद ईरान की मदद करने का वादा किया है। रूस ईरान से तेल खरीदकर अन्य देशों को बेचता है। रूस ने कहा है कि वो ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा। बीजिंग में चीनी प्रधानमंत्री ली केचियांग और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच बातचीत के बाद चीन पाकिस्तान को और आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार हो गया है। चीनी अधिकारियों का कहना है कि आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की मदद करने पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है और इसे अंतिम रूप देने के लिए और बातचीत की ज़रूरत है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में चीन ने 60 अरब डॉलर का निवेश किया है। हालांकि अब इस प्रोजेक्ट की आलोचना भी हो रही है। चीन के उप विदेश मंत्री कोंग जुआन याओ ने कहा,
这次访问虽然涉及到了中方啊，原则上表示支持，对这个八方啊克服当前的经济困难提供必要的帮助和支持。
इस यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि चीनी सरकार पाकिस्तान को अपनी मौजूदा आर्थिक दिक्कतों से उबरने के लिए जरूरी सहयोग और सहायता देगी। इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर दोनों देशों के अधिकारी विस्तृत चर्चा करेंगे। ये थे चीन के उप विदेश मंत्री कोंग जुआयान के शब्द। ईरान का कहना है कि उसने अपनी वायुसेना के लिए घरेलू स्तर पर लड़ाकू विमान बनाना शुरू कर दिया है। ईरान के रक्षा मंत्री आमिर हातेमी ने कहा कि प्रतिबंधों के बावजूद विमान बनाना ईरान की क्षमताओं को दर्शाता है। कुछ सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान का विमान अमरीकी लड़ाकू विमान USF-5 की नकल होगा। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोप से बरी हुई ईसाई महिला आसिया बीबी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील का कहना है कि वो सुरक्षा कारणों से देश छोड़ रहे हैं। सैफ उल मुल्क का कहना है कि आसिया बीबी की न्याय की लड़ाई को जारी रखने के लिए उनका जीवित रहना ज़रूरी है। आसिया बीबी को पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में साल 2010 में दोषी करार दिया गया था। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इसी सप्ताह उन्हें बरी कर दिया था, जिसके बाद देश भर में कट्टरपंथी धार्मिक लोगों ने अदालत के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं। यमन के तटीय शहर हुदैदा में लड़ाई और भीषण हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के समर्थक बलों ने शहर के उत्तर और पूर्व में विद्रोहियों के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं। सरकार के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम इस शहर से विद्रोहियों को बाहर निकालने के लिए लड़ाई जून में शुरू हुई थी। यमन में युद्ध की वजह से भूखमरी की स्थिति फैल रही है। बीबीसी समाचार।
नेता बोले, अफसर बोले, पैसा बोला, बंदूक बोली, अभिनेता विलेन बोले, नहीं बोल सके तो बस आप।
अब इंतजार खत्म, जुबान पर लगे ताले खोल, बीबीसी इंडिया बोल।
बीबीसी इंडिया बोल सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं लाइव। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के बहाने सरदार पटेल की विरासत पर दावेदारी, आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस, सियासत की जंग में सरदार पटेल पर किसका कितना हक। इंडिया बोल में रखिए अपनी राय। हमारी टेलीफोन लाइनें खुल चुकी हैं, टोल फ्री नंबर एक बार फिर आपको बता देते हैं 1811-7000 और 1811-7001। स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आदित्य फड़ने, स्वागत है आपका।
नमस्कार।
स्वागत है तमाम उन श्रोताओं का भी जो हमें सुन रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मूर्तियां बोलती नहीं, लेकिन राजनीति में मूर्तियों के सहारे बड़े संदेश आगे बढ़ाए जा सकते हैं। प्रतिमाओं को प्रतिमान बनाकर विरोधियों से सवाल हो सकते हैं, उन्हें कटघरे में खड़ा किया जा सकता है और उन पर वार भी हो सकता है। प्रतिमा जितनी बड़ी हो, उसके धरातल से उठने वाली सियासी ललकार उतनी ही जोरदार हो सकती है। बीती 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया। करीब 3,000 करोड़ रुपए की कीमत से तैयार इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, अमेरिका की मशहूर स्टैचू ऑफ लिबर्टी से करीब 2 गुना ऊंची। जितनी चर्चा इस मूर्ति की खूबियों की है, उतने ही सवाल इसे लेकर हो रही सियासत पर भी किए जा रहे हैं। मूर्ति अनावरण के समय एक सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया, सुनिए।
सरदार पटेल जैसे महापुरुषों, देश के सपूतों की प्रशंसा करने के लिए भी पता नहीं हमारी आलोचना की जाती है। ऐसा अनुभव कराया जाता है जैसे हमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा साफ था। उसी दिन ट्विटर पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बिना कोई नाम लिए हमला किया। राहुल ने लिखा, विडंबना है, सरदार पटेल की मूर्ति का अनावरण हो रहा है, लेकिन हर वो संस्थान जिन्हें बनाने में उन्होंने मदद की, उन्हें तोड़ा जा रहा है। राहुल गांधी पहले भी इस मूर्ति के बहाने सवाल खड़े कर चुके हैं, सुनिए।
सरदार पटेल जी की मूर्ति बन रही है और वो भी चाइना में बन रही है, उसके पीछे भी मेड इन चाइना लिखा होगा, ये शर्म की बात
है। साफ है, मूर्ति के जरिए कोशिश सरदार पटेल की विरासत पर हक साबित करने की है। इस विरासत पर किसका कितना हक है, ये सवाल रखेंगे अदिति जी के सामने, लेकिन पहले सुन लेते हैं एक श्रोता की बात जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
हेलो सर, वत्सल जी नमस्कार।
जी नमस्कार, अपनी बात रखिए, अपना नाम बताइए।
दिव्येश्वर अवस्थी कानपुर से बोल रहे हैं सर।
जी बताइए।
ये सर हम ये कहना चाहते हैं, सरदार पटेल किसी भी पार्टी से बढ़ के है, वो उनका योगदान देश के लिए रहा है और वो देश के नेता है। अगर कोई पार्टी कोई भी पार्टी उनके लिए कुछ करती है तो इस पे दूसरे को इतराज नहीं होना चाहिए कि वो हमारे नेता है, मैं तू नहीं होना चाहिए बड़े नेताओं को।
जी अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया अदिति जी, मैं आपको चर्चा में शामिल करूंगा। जैसा अभी हमारे श्रोता ने कहा, मेरा आपसे सीधा सवाल, किसका कितना हक सरदार पटेल पर?
नहीं, मेरे ख्याल से हक तो सभी का है, लेकिन जहां तक मूर्ति बनाने की राजनीति है, शुरू में जब 2014 के चुनाव से पहले जब नरेंद्र मोदी अपना कैंपेन कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने कहा था कि हर घर से थोड़ा सा लोहा लेके और हम एक ऐसी मूर्ति बनाएंगे जो कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी से ऊंची होगी, और लोगों ने जगह जगह से लोहा दिया भी। अब सरदार पटेल ने भारत को जोड़ने का काम किया, तो हो सकता है कि अगर वो उनकी इंटेंशन होती तो शायद हो सकता है कि जगह जगह से लोहा आता और उसके सहारे सरदार पटेल की स्टैचू बनती। हो सकता है स्टैचू ऑफ लिबर्टी से ऊंची ना होती, लेकिन कम से कम पूरा भारत एक मूर्ति में जुड़ जाता। ऐसा हुआ नहीं, और वो फिर पता नहीं बदल के कब एक कॉरपोरेट अफेयर बन गया, एक इवेंट बन गया। तो मुझे लगता है कि जिस मंशा से उन्होंने ये पूरा अभियान चालू किया था, वो कहीं बीच में
पीछे छूट गई,
भुला गए।
जी लेकिन अभी बात तो हुई कि लोहा इकट्ठा भी किया गया, मिट्टी भी मनाई गई, कितना इस्तेमाल हुआ ये एक सवाल है, सवाल कई लोग खड़े कर रहे हैं। एक श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं बीच में, उनसे उनकी बात सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
नमस्कार।
जी नमस्कार, अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
मेरा नाम शिव है।
जी शिव जी, स्वागत है आपका।
जी बहुत धन्यवाद। मेरा कहना ये है, दो पार्टियों के बीच के कोलैप्स को लेकर क्यों देखा जा रहा है?
जी
सरदार पटेल को केवल दो पार्टियों के बीच का मुद्दा बना दिया गया, छोड़ दिया गया।
जी
क्योंकि 70 साल तक जो कांग्रेस के पास थे, वो कांग्रेस के पास साबित करने का मौका था कि वो अपनी विरासत साबित करते।
जी
लेकिन कांग्रेस ने सरदार पटेल को निश्चित तौर पर वो सम्मान इतिहास में नहीं दिया जो सरदार पटेल को मिलना चाहिए था।
जी इस बीच एक और श्रोता हमारे साथ हैं। शिव जी अपनी बात रखने के लिए धन्यवाद। जी अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
जी सर।
जी अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
जी मैं लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, अज्ञा बाजार पीरो भोजपुर बिहार से मैं बोल रहा हूँ सर।
जी लक्ष्मण जी, आपका क्या कहना है?
मेरा यही कहना है सर कि सरदार पटेल आज के ही नेता नहीं है, सिर्फ एक पार्टी के नेता नहीं, पूरे ये हिंदुस्तान के नेता है।
जी ये एक बात हमारे एक और श्रोता ने भी रखी लक्ष्मण जी, जो आपने बात रखी थी, जो ये सवाल इस समय उठ रहा है ये सवाल नया नहीं है। 2013 जहां आपने बात की, जब इस मूर्ति के बनने की शुरुआत हुई थी तब भी ये सवाल उठा था, इस साल की शुरुआत में भी ये सवाल उठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस मुद्दे का जिक्र किया, उन्होंने क्या कहा था वो भी सुनाते हैं।
जय सत्य नहीं है, जब देश में कांग्रेस में नेतृत्व करने के लिए चुनाव हुआ, 15 कांग्रेस कमेटियां, उसमें से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था, 3 लोगों ने नोटा किया था, किसी को भी वोट नहीं देने का निर्णय किया था, उसके बावजूद भी नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया, वो कौन सा लोकतंत्र था?
नरेंद्र मोदी लोकसभा में फरवरी में उन्होंने ये बात कही थी। एक बड़ा नाम है राजमोहन गांधी, उन्होंने सरदार पटेल की जीवनी लिखी। उन्होंने बीबीसी में हमारे सीनियर सहयोगी रेहान फजल साहब से बात की थी, वो 2013 की ही बात मैं आपको बता रहा हूँ। और तब राजमोहन गांधी साहब ने कहा था कि हर पार्टी को हक है कि वो बीते 50 या 100 साल में हुए नेताओं से प्रेरणा लें, लेकिन उनकी विरासत को राजनीतिक बनाना ठीक नहीं है। कई हमारे श्रोता भी यही बात कह रहे हैं। अदिति जी आप पूरे इस मुद्दे को कैसे देखते?
मेरे ख्याल से कहना तो बहुत आसान है कि इसके पीछे किस तरह की राजनीति है और राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन असलियत ये है कि राजनीति हमारे पोर पोर में फैली हुई है और इससे राजनीति निकालना बहुत मुश्किल है। आखिर कोशिश क्या हो रही है? कोशिश ये हो रही है कि सरदार पटेल भाजपा के नेता हैं और कांग्रेस ने उन्हें उनका तिरस्कार किया और उनका कद छोटा किया और हम उनको उनके सही कद पे ला रहे हैं। लेकिन मुझे ये याद है कि जब इसी नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के पद जब उन्होंने संभाला था, तो उस समय जसवंत सिंह ने सरदार पटेल पे एक किताब लिखी थी और वो किताब बिना पढ़े नरेंद्र मोदी ने गुजरात में बैन करवा दी थी।
जी।
तो उनको लगता था कि सिर्फ सरदार पटेल मेरा है और कोई उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता,
यानी भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी लोग नहीं कर सकते।
तो वर्चस्व किसका होना चाहिए और सिर्फ मेरा है तुम्हारा नहीं है, ये सब कहना थोड़ा बचपना है। और मेरे ख्याल से प्रकारांतर से आपके जितने श्रोता अपना रिएक्शन दे रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं।
जी एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। अदिति जी, जी अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
हाँ जी मैं पुरसद से अरुण बगड़े बोल रहा हूँ सर।
जी अरुण जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए।
हाँ जी ये पटेल तो कांग्रेस के ही नेता है ना सर? हेलो सर।
जी जी
हाँ कांग्रेस के ही नेता थे और उन्हीं के तरफ से आज इनको विरोध हो रहा है। इनका पुतला तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था। आज जो इन्होंने बनाया है उसकी तो ये क्या है, राहुल गांधी जी को कोई विजन तो है ही नहीं और जो भी जो जो अच्छा
जी
काम
ये
करता है।
आपकी अपनी एक राय है। हाँ जो सर। आपने रखी अरुण जी, एक हाँ। और श्रोता हमारे साथ जुड़े हाँ। हुए हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी
हेलो।
जी अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
हेलो, मैं अनिल डोबराल, विकास खंड जारीखान।
जी अनिल जी, अपनी बात रखिए।
जिला पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से बोल रहा हूँ भाई साहब, प्रणाम।
जी नमस्कार अनिल जी, अपनी बात रखिए।
भाई साहब, जो सरदार पटेल जी के विषय में जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की पार्टी कर रही है, ये गलत है, क्योंकि जो महापुरुष हैं न तो भारतीय जनता पार्टी के हैं न कांग्रेस के, इन पे सभी पार्टियों का अधिकार है, पूरे देश का इन पे अधिकार है। ये महापुरुषों के ऊपर राजनीति का खेल जो है, ये अच्छी बात नहीं है। धन्यवाद
जी। अदिति जी, जैसा आप देख रही हैं, कोई श्रोता कानपुर से बोल रहे हैं, कोई उत्तराखंड से बोल रहे हैं, लेकिन कमोबेश उनकी बात लगभग एक सी नजर आती है। बात सरदार पटेल की आज जरूर हो रही है, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो आज़ादी के जितने भी नायक थे, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, भगत सिंह हों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हों, उन सब की विरासत की भारतीय जनता पार्टी बात करती है। बात यह भी करती है कि कांग्रेस पर आरोप भी लगाया जाता है, तो उसे क्या लगता है कि इन मुद्दों को उठाकर, इन नेताओं का नाम लेकर कांग्रेस को बैकफुट पर रखना ज़्यादा आसान होता है?
मेरे ख्याल से आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है। हमने ये बार बार देखा है और ये एक पैटर्न है जो कि एक तरह से रेकर कर रहा है। अगर सरदार पटेल की बात न करें एक मिनट के लिए और प्रणब मुखर्जी की बात करें, तो ठीक यही चीज़ हम लोगों ने उसमें भी देखी थी। उनकी थीम ये थी बीजेपी की कि सरदार पटेल की तरह प्रणब मुखर्जी जैसे विद्वान और इतने शीर्ष नेता को कांग्रेस ने कितना जलील किया, उनको प्रधानमंत्री का पद नहीं दिया और ये पूरी विरासत कांग्रेस गांधी परिवार की मानती है, इसीलिए उनको, और जो थोड़ा कद में बड़ा हो जाता है वो इनकी छाया में आके और गांधी परिवार की छाया में आके और फिर अपनी जगह कभी अपनी जगह पर आसीन हो ही नहीं सकता कभी।
यानी जो उनका कद था इतिहास में, उस तरीके से वो दर्ज नहीं हो पाते। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का ये जो कोशिश है, ये मैसेज जा पाता है और कांग्रेस इसे काउंटर नहीं कर पाती, आप किस तरह से?
मेरे ख्याल से कांग्रेस में थोड़ी मुश्किल हो रही है काउंटर करने में उसको, और थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि इतने दिनों से जिस चीज़ को आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया, तो अब लोग उस पर सवाल उठाएंगे तो आपको एकदम से उसका जवाब नहीं मिलता, नहीं आता मुँह में। लेकिन मेरे ख्याल से सीख रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, और आने वाले समय में एक डिबेट होगा, एक विवाद होगा हमारी
जी। कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाया जाता है, जब भारतीय जनता पार्टी सवाल उठाती है कि कांग्रेस ने, शीर्ष नेतृत्व में गांधी नेहरू परिवार ने इन नेताओं को नज़रअंदाज किया, तो कांग्रेस की ओर से सवाल उठाया जाता है, उनके आदर्शों की बात की जाती है, उनकी नीतियों की बात की जाती है, लेकिन लोगों के बीच जो मैसेज जाता है, आपको क्या नज़र आता है कि क्या मैसेज जा रहा है?
यही कि इस समय जो डोमिनेंट नैरेटिव है वो यही है कि कांग्रेस ने गलत किया
जी,
और मोदी जी जो कर रहे हैं वो ऐसे नेताओं को अपनी सही जगह देने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। और अगर देखा जाए तो बैलेंस ऑफ एडवांटेज जो एरर और सिंस ऑफ एरर और एंड कमीशन ओमिशन एंड कमीशन, वो उसका ज़्यादा भार कांग्रेस पर डाला जा रहा है
जी,
कि आपने गलती की और जो मोदी जी कर रहे हैं अब वो उसको ठीक करने के लिए कर रहे हैं
जी। इस बीच में एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
नमस्कार जी, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। राकेश कुमार भामू बात कर रहा हूँ, गांव रामसरा, जिला फतेहाबाद, हरियाणा से।
जी राकेश जी, अपनी बात रखिए।
जी बिल्कुल, इनको न तो इतना ले ही ना हल्के में ही लिया जाए, राहुल गांधी जी को ये भी राजनीति सीख रहे हैं, इन्होंने तो नेहरू परिवार ने तो बिल्कुल ही दबा दिया था इनके जो बड़े
जी। सवाल ये है आज का कि विरासत पर हक किसका है, कांग्रेस का है, भारतीय जनता पार्टी का है, पटेल की विरासत?
भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही कर रही है सर, जो दबे हुए नाम है उनको आगे लेके आ रही है, लोगों के सामने रख रही है, जगह पहुंचा रही है। गांधी परिवार ने तो बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू और इनको ही सामने रखा
जी। एक और श्रोता हमारे साथ है, राकेश जी अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया। जी अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
हेलो
जी नमस्कार, अपना नाम बताइए। जी
मैं बोल रहा हूँ
जी,
दशहरा उत्तर गुजरात से।
जी
अच्छा, मैं क्या कहता हूँ कि अभी वल्लभ भाई पटेल जी की जो मूर्ति जो लगाई तो बराबर सही है, लेकिन गांधी जी की मूर्ति जो क्यों नहीं लगाया, गांधी जी की मूर्ति भी लगानी चाहिए साथ में।
जी जी, सवाल एक के बाद एक मूर्ति से जुड़ा हुआ सवाल है कि पटेल की आप मूर्ति बना रहे हैं गुजरात के अंदर, इतनी बड़ी मूर्ति बना रहे हैं जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दुगनी है, इनका सवाल ये है कि आखिर आप गांधी की मूर्ति क्यों नहीं बना रहे? ये कांग्रेस ने भी सवाल उठाया था।
अब कांग्रेस तो सवाल पूछ सकती है कि मूर्ति आपने फलां की क्यों बनाई और फलां की क्यों नहीं बनाई। अब उस भारत में मूर्तियों का कोई मतलब अंबार
जी, मूर्तियां सबकी हैं, गांधी की भी कई मूर्तियां हैं, लेकिन इतनी बड़ी मूर्ति नहीं है शायद।
मेरे ख्याल से एक चुनावी एक उन्होंने घोषणा की थी, उसको पूरा करना था, उन्होंने पूरा किया, और उससे उसको कैसे निचोड़ के उससे कितना रस निकल सकता है वो अब वो प्रक्रिया जारी है।
जी अदिति जी, हमें सोशल मीडिया पर भी कई कमेंट मिले हैं, फेसबुक और ट्विटर पर मिली कुछ टिप्पणियों को मैं पढ़ देता हूं। फहद अली फेसबुक पर लिखते हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही सरदार पटेल की विरासत पर हक नहीं है। भरत नंदा का सवाल है कि संसद परिसर में फोटो तक नहीं लगाने वाली कांग्रेस किस मुंह से पटेल की बात करती है। नफीस बरकती लिखते हैं कि सम्मान देना है तो पटेल की सोच को भी अपनाएं। आशीष यादव ने ट्विटर पर लिखा है, सरदार दलों से ऊपर हैं, न वो मोदी के हैं न वो राहुल के, वो पूरे भारत के हैं। तो क्या एक ये सेंटिमेंट आ रहा है कि सरदार पटेल जो हैं वो पूरे भारत के हैं, और एक सवाल जो उठता है कि उनको नज़रअंदाज किया गया, क्या इस वजह से ये सेंटिमेंट सरदार पटेल के हक में ज़्यादा जाता है?
मेरे ख्याल से यही हो रहा है, और ये जैसा मैंने कहा ये प्रणब मुखर्जी के सिलसिले में भी हुआ है, और मेरे ख्याल से जिस चीज़ पर ये लोग टिप्पणी बहुत कम कर रहे हैं भाजपा, वो मोरारजी देसाई को लेकर है
जी।
क्योंकि मोरारजी देसाई भी बहुत बड़े नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस उन्होंने छोड़ी क्योंकि उनको नेहरू गांधी परिवार का जो
गुजरात चुनाव के दौरान उनका जिक्र आया था
निश्चित रूप से। और लेकिन लोग ये भूल जाते हैं और इतिहास भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा रोल मोरारजी देसाई का ये था कि उन्होंने एक सीमा से आगे अटल बिहारी वाजपेयी को जाने नहीं दिया
जी,
और उन पे नज़र रखते थे, और ये सब बातें नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखी हैं, और वो बहुत ही रोचक बातें हैं कि किस तरह से मोरारजी देसाई ने बार बार रोकने की कोशिश की अटल बिहारी वाजपेयी को
जब वो विदेश मंत्री थे
1977 जनता पार्टी की सरकार में। तो ये एक बहुत ही रोचक चीज़ है कि हालांकि मोरारजी देसाई भी गुजरात के इतने बड़े नेता हैं, और देखा जाए तो उनको बहुत बड़ा मानना चाहिए क्योंकि उन्होंने नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन वही आदमी एक समस्या बन जाता है जब उसका जिक्र किया जाता है वाजपेयी जी के सिलसिले
जी। बिल्कुल, इस बीच में एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
मैं रामेश्वर सिंह चौहान, मध्य प्रदेश देवास एमपी से।
जी रामेश्वर जी,
मेरा सवाल यह है सर, कहने का अर्थ ये कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो प्रतिमा बनी है वो बहुत अच्छा किया है, देश को पर्यटक के दृष्टिकोण से एक अच्छा आमदनी भी मिलेगा विदेशों से, और उसके साथ साथ में जो देश के लिए, चाहे कोई भी देश के स्वतंत्रता के लिए जिन अपना योगदान दिया है उसमें कोई पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, जहां तक मेरा सवाल।
जी रामेश्वर जी, अपनी बात रखने के लिए शुक्रिया। एक और श्रोता हमारे साथ हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
हेलो सर
जी।
हाँ, मैं शेख सराजुद्दीन, बीबीसी लंदन गोपालगंज बिहार से बोल रहा हूँ। मैं भाजपा का प्रखंड अध्यक्ष हूँ सर।
जी बताइए शेख साहब, अपनी बात रखिए।
अल्पसंख्यक मोर्चा का महापुरुष है सर, उनका स्टेच्यू अगर बना है तो बहुत अच्छा काम किया है, भाजपा उनको इज्जत दिया, सम्मान दिया है, इस पर सर राजनीतिक नहीं होना चाहिए
जी। ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं।
हमारे सर अंबेडकर चौक भी है, गांधी चौक भी है, और महाराणा प्रताप जी के भी पुतला है घोड़े के ऊपर, इसके ऊपर सर राजनीतिक नहीं होना चाहिए।
जी बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। अदिति जी, तर्क ये भी दिया जाता है कि सरदार पटेल राजनीति में परिवारवाद के हिमायती नहीं थे, लेकिन तथ्य की अगर हम बात करें तो वो ये भी है कि उनके बेटे डाया भाई और उनकी बेटी मड़ी बहन दोनों ही राजनीति में थे, दोनों ही सांसद रहे, दोनों ही शुरुआत में कांग्रेस के साथ थे और बाद में उनकी राहें अलग हो गईं। फिलहाल सरदार पटेल के परिवार से उनकी विरासत की दावेदारी करने वाला कोई नहीं है। गुजरात की अगर बात करें तो पटेल समुदाय से लगातार नए नेता सामने आ रहे हैं, तो क्या ये मूर्ति और उसके बहाने कांग्रेस को घेरना और ये पूरी सियासत, उसकी नज़र एक पटेल वोटों पर भी है?
निश्चित रूप से, वो तो हमेशा होता ही है। पटेल बीच में इधर पटेल समाज ने एक काफ़ी मुखर होके भाजपा के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी। तो निश्चित रूप से पटेल समाज को आदर देना, उनको उनका सम्मान करना, ये भी उसमें निहित है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मूर्तियों की राजनीति कुछ दिन तो चल जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक इसको चलाना मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल होगा।
लेकिन जो टाइमिंग है, जैसे आपने 2013 की बात की जब शुरुआत हुई थी, वो चुनाव से कुछ पहले था
एकदम,
और ये जो टाइमिंग इस बार की है 2018 में जब ये पूरी हुई है, मुकम्मल हुई है, तो टाइमिंग आपको लगता है कि मतलब इतना लंबा खिंच सकता है या उसका असर तब तक भी नहीं होता?
नहीं, इतना लंबा तो खिंच सकता है और मेरे ख्याल से खिंचेगा भी, लेकिन उसके बाद आप अगर मूर्तियों के आधार पे अपनी राजनीति को करना चाहें तो तब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे ख्याल।
जी अदिति जी, इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे। इस बीच में एक और श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए।
सर ब्रह्मानंद सीतापुर उत्तर प्रदेश से।
जी ब्रह्मानंद जी, अगर आप अपना रेडियो पीछे से बंद कर देंगे तो आपकी आवाज हम ज्यादा बेहतर तरीके से सुन पाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको ध्यान दिलाने के लिए।
जी ब्रह्मानंद जी,
मैं बता रहा हूँ कि जो है भारत में हर महापुरुष को उसका स्थान दिलाने का हक है, भारत के अच्छे नागरिकों को।
जी।
और अभी कोई गांधी जी की बात कर रहा तो वो हमारा भारत जो है गांधी जी की आंखों से देखता है, तो उसमें जो है हमारे नोट पे गांधी जी का चश्मा बना हुआ है और पटेल जी की प्रतिमा जो बनाई गई है उसमें भी यही दर्शाया गया है। जी सर।
जी एक और श्रोता हमारे साथ हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं। जी अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए।
जी सर, अवध बिहारी पांडे बलरामपुर यूपी से बोल रहे हैं सर। जी
अवध जी, स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए।
जी सर जी, जब दुबई में बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत हो सकती है तो इसमें तो गर्व की बात होनी चाहिए ना कि हमारे देश में भी कोई ऐसा इमारत ये बन रहा है, मूर्ति बन रहा है।
जी किसी नेता की मूर्ति को इमारत से तुलना करना कितना ठीक होगा ये मुझे जानकारी नहीं है। अवध जी अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया। अदिति जी एक सवाल ये और उठता है कि इतिहास अपनी जगह है, नायकों की भी अपनी जगह है, लेकिन क्या कई बार इतिहास का जिक्र इसलिए तो नहीं किया जाता कि मौजूदा जो मुद्दे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, आज की राजनीति के मुद्दे हैं, उन पर से ध्यान हट जाए और बहस कुछ साल पीछे चली जाए?
नहीं, इतिहास का की आड़ में राजनीति करना कोई नई बात नहीं है और कांग्रेस ने बहुत सालों से इसी को किया है, तो अब भाजपा कर रही है तो इसमें तो कोई मेरे ख्याल से इसमें कोई मतभेद नहीं हो सकता है। लेकिन मूर्तियाँ, हमने मायावती की मूर्तियाँ भी देखी हैं, हमने और लोगों की मूर्तियाँ भी देखी हैं। एक मूर्ति
बुद्ध, जी मायावती की मूर्ति की आपने बात की, उसकी तो चौतरफा सारी पार्टियाँ विरोध करती थी।
जी, और बुद्ध भगवान की प्रतिमा हुसैन सागर लेक में NTR ने बनवाई दलितों को अपनी तरफ करने के लिए, तो ये सब तो काफी साल से हो रहा
तो
है।
तो क्या मेन मुद्दे जो हैं इन मूर्तियों के सारे पीछे किए जा सकते हैं?
थोड़ा
क्या?
सा इतिहास का अवलोकन, थोड़ा सा इतिहास का को रीराइट करना, एक नए नजरिए से उसको देखना और फिर एक सामने एक तर्क रखना कि आप बताइए, लोगों के सामने एक तर्क रखना कि आप बताइए कि क्या हमारा इतिहास सही है या जिस तरह से हम लोग इतिहास पहले पढ़ते थे वो सही है, ये मेरे ख्याल से सवाल है। और भाजपा इतिहास की खोज में है, ये अपने आप में एक।
जी एक आखिरी श्रोता को हम ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए। जी अपना नाम बताइए, अपनी बात रखिए, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो। लगता है संपर्क कट गया है। अदिति जी मैं एक आखिरी टिप्पणी आपसे लेना चाहूँगा कि ये जो विरासत की जंग चल रही है, क्या लोगों के पास ये नैरेटिव सही तरीके से दोनों पार्टियाँ पहुँचा पा रही हैं? संक्षेप में मैं जानना चाहूँगा, और किसको फ़ायदा मिल सकता है आपकी नज़र में?
इस समय तो निश्चित रूप से भाजपा को फ़ायदा मिल रहा है और कांग्रेस इसका ठीक से जवाब नहीं दे पा रही है। अंदर ही अंदर कांग्रेस दांत पीस रही है लेकिन जवाब नहीं दे पा रही है।
क्या तैयारी की कमी है, रिसर्च कम है, या अपने इतिहास को रिकवर नहीं
कुछ,
कर
सब कुछ मिल के एक इकट्ठा होके आ रहा है आखिर? अगर और सर्व सम्मति से जिन लोगों की मूर्तियां बनाई जा रही हैं वो सर्वसम्मति से है, उसमें कोई विवाद नहीं हो सकता,
विवाद नहीं हो सकता, वो सभी के नायक हैं। बहुत शुक्रिया अदिति जी, वक्त हमारे पास इतना ही है, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन सभी श्रोताओं का भी आभार जो कार्यक्रम में जुड़े, जिन्हें मौका नहीं मिल सका उनसे माफी। स्टूडियो का संचालन किया अजित सारथी ने। अगले सप्ताह ऐसे ही किसी प्रमुख विषय पर इंडिया बोल में होगी चर्चा। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में। फिलहाल वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।